नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में समय है वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश राव। नमस्कार राकेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़े उससे पहले अब तक की हेडलाइंस जान लेते हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत ने तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 23 रन से हराया, श्रृंखला में 2-1 की बढ़त ली। महिला क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले कल और स्पेन यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में दूसरा सेमीफाइनल देर रात नीदरलैंड्स और इंग्लैंड के बीच। शुरुआत क्रिकेट के मैदान से। भारत ने आज हरारे में तीसरे T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 23 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन ही बना सकी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 66 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने 3 जबकि आवेश खान ने 2 और खलील अहमद ने 1 विकेट लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-1 से बढ़त बना ली है। देखा जाए तो राकेश जी, T20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और शिवम दुबे ने इस मैच से वापसी की है और इसलिए कप्तान शुभमन गिल के साथ ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल थे और दोनों ने टीम को एक बहुत ही मजबूत शुरुआत दी।
बहुत अच्छी शुरुआत थी, लेकिन ये भी कहना होगा कि जिम्बाब्वे ने जैसे इंडिया को स्टार्ट दिया, मतलब पहला रन अगर आप देखें, उन्होंने फील्डिंग जो खराब करनी शुरू की पहली बॉल से लेके आखिरी ओवर में जो ड्रॉप किया उन्होंने ऋतुराज को, हालांकि उसके अगली बॉल पे वो आउट भी हो गए। पूरा देखिए, ये जो 23 रन का डिफरेंस है अगर आप इसको देखें तो ये है कि उनकी फील्डिंग इतनी खराब थी, उन्होंने कम से कम तो 20 रन तो उन्होंने छोड़े हैं। मतलब बॉल हाथ से लग के बाउंड्री पे जा रही है, जो बॉल पे सिंगल आना चाहिए वहां 4 जा रहे हैं, तो उन्होंने, और उनकी जो ग्राउंड फील्डिंग तो खैर खराब थी, कैचिंग भी कोई अच्छी नहीं थी।
जायसवाल को 2 बार जीवन दान मिला।
तो ऐसे ऐसे जब आप क्रिकेट खेलते हैं, वो आपकी नेशनल टीम है, इंडियंस तो चलो कह सकते हैं कि सर हमारी ये सेकंड स्ट्रिंग टीम है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, इंडियंस जीत जरूर गए हैं, मेरे ख्याल से इंडियंस भी अपने कैंप में उतने खुश नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने जिस अंदाज से पिछला मैच जीता था, 100 रन से जीते थे, टीम को उन्होंने रोका था 134 पे, वैसा आज इन्होंने बॉलिंग भी नहीं की है। इंडियंस ने बॉलिंग में बहुत रन्स गए हैं हमारे, अगर आप देखें अभिषेक और शिवम ने आप सिर्फ 4 ओवर डाले दोनों ने मिलकर और 50 रन दिए हैं। तो अगर हमारे जो यू नो पार्ट टाइम बॉलर्स भी कहें, हालांकि अपने आपको ऑलराउंडर्स कहते हैं, इनकी परफॉर्मेंस आज इम्प्रेसिव नहीं थी, लेकिन हाँ आपको ये मैच जीतना था, आप जीत गए। और नॉर्मली T20 में अगर आप कहें कि 20 रन के मार्जिन से जीत रहे हैं तो एक 50 ओवर का मैच आप जीत रहे हैं 50 रन से, वर्चुअली दैट, एक ओवर एक रन के हिसाब से, जो एक अच्छा मार्जिन कहते हैं। लेकिन क्योंकि हमने पिछला मैच हम बहुत अच्छा खेले थे और उस हिसाब से जो स्टार्ट भी था वो भी बहुत अच्छा था, हम ऑलमोस्ट
के खिलाफ पहली बार इतनी बड़ी
बिल्कुल बिल्कुल।
अभिषेक शर्मा की जहां बॉलिंग भी अच्छी नहीं रही वहां बैटिंग भी आज अच्छी नहीं रही, 10 रन पिछली बार
शतक लगाया था। देखिए वो होता है क्योंकि आप उस कॉन्फिडेंस के साथ आते जरूर हैं, लास्ट टाइम ओपन किया था, इस बार ओपन करने के लिए उनको स्लॉट नहीं मिला, शुभमन गिल और जायसवाल ने ओपन किया और कुछ चीजें होती हैं, लेकिन ठीक है क्योंकि देखिए ये जो अटैक है जिम्बाब्वे का, हम लोग अभिषेक के जो अंदाज था उनका 46 बॉल पे 100 जो उन्होंने किया था, बहुत अच्छे लग रहे थे रन वगैरह। एक चीज हमको ये भी नहीं भूलनी है कि ये जो जिम्बाब्वे की टीम है ये भी अपने फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, इन्होंने भी अपने 3 सीनियर प्लेयर को बैठा के रखा हुआ है और वो भी ट्राई कर रहे हैं हमारे साथ क्योंकि उनको पता है ये इंडिया की बेस्ट टीम नहीं है, लेकिन हाँ ये इंटरनेशनल गेम है तो अप्रोच अच्छा है। मेरे हिसाब से ये सीरीज इंडिया को 5-0 ही जीतनी थी क्योंकि हमने जो पहला मैच हमने उनको रिस्ट्रिक्ट करने के बाद ये जो यंगस्टर्स थे वो इतने प्रेशर में आ गए कि उनसे वो रन चेज नहीं हुए और हम वो मैच हारे, लेकिन हाँ वहां से जो वापसी की है कमाल की है।
हाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शुरुआत में जो जिम्बाब्वे एक बार प्रेशर में आ गई थी, हालांकि बॉलिंग बाद में बहुत अच्छी नहीं रही इंडिया की, लेकिन 39 रन पर ही 5 विकेट
गिर गए शुरू में, उस टाइम से मैच खत्म हो गया था, मतलब आपने उनका जो एक्चुअल चेज था वो तो खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो साझेदारी हुई वो कमाल की हुई। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंडियन टीम है अभी, ये वाली जो टीम है ये सीख रही है, ये अभी उनको प्रेशर में जब आने के बाद जब एक परफॉर्मेंस निकालनी पड़ेगी अपनी तरफ से, वो अभी हमको देखना है। खैर यही दिन है कि आप यहीं से आप धीरे धीरे अपने आप को पक्का करते हैं, मजबूत करते हैं, और फिर आप सीनियर टीम या फिर जो एक्चुअल जो फर्स्ट इलेवन है उसमें अपनी दावेदारी आगे चल के पेश करेंगे ये लोग। तो अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब ये जो मूव था ये बहुत अच्छा था कि वर्ल्ड कप खत्म हुआ, आपने उनको रेस्ट कराया। एक्चुअली ये जो तीन लड़के भेजे भी हैं जो हमने, उसकी भी जरूरत थी नहीं वैसे, क्योंकि उनको वहां मौका नहीं मिला। तो अगर उसी हिसाब से शिवम दुबे को बिठा देना चाहिए था और चहल को भेज देना चाहिए था। तो शिवम तो दोनों खेले, चहल दोनों ही नहीं खेले, तो ये भी एक चीज है। लेकिन हाँ ठीक है, ओपोजिशन के हिसाब से हम अच्छा खेल रहे हैं।
बिल्कुल। उधर महिला क्रिकेट ने भी बहुत अच्छा खेला कल। महिला क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मैच में कल दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। कल चेन्नई में भारत ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 17 ओवर और एक गेंद में 84 रन पर ही समेट दिया। भारत ने 85 रन का लक्ष्य बिना किसी नुकसान के केवल 10 ओवर और 5 गेंदों में हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने 54 जबकि शेफाली वर्मा ने 27 रन बनाए। स्मृति मंधाना, मतलब देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट मैच हो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी चल रही है।
वनडे में तो खैर कमाल था, उन्होंने तो ऑलमोस्ट तीन लगातार 100 कर दिया था उनका, 100 उनका छूट गया, बाकी तो 2 में 100 थे उनके। हाँ देखिए, ये जो टीम है, देखिए विमेंस क्रिकेट में हमको एक चीज ये भी याद रखनी है कि तीन टीम बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, ये 2 टीम है, तो 5 टीमें आप ले सकते हैं। इसके अलावा किसी और टीम की बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एशियन टीम्स बहुत वीक है, तो साउथ अफ्रीका के साथ ये जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। यकीन मानिए ये कोई वो जो ये नीचे की जो टीम्स हैं उसमें से नहीं है, ये टॉप 5 की एक टीम है। उसको हमने जिस हिसाब से टेस्ट मैच में जो हराया, 10 विकेट से हराया, ये सीरीज खत्म की 10 विकेट से, हालांकि वो जो पहला मैच हारे वो हम बहुत अच्छे नहीं खेले थे, लेकिन हाँ होता है, आपने उनको इतने रन स्कोर करने का मौका भी दिया, और सेकंड मैच नहीं हो पाया बारिश से, तो ये जो सीरीज 1-1 पे खत्म हुई है, इंडिया ने कम से कम जिस अंदाज से फिनिश किया है मैच, एक तो उनको जल्दी रिस्ट्रिक्ट किया आपने 84 पे, और अपने जो अलॉटेड ओवर्स है उसके लगभग आधे जो आपने है सिर्फ उतने ही यूज किए, बाकी आपने विद ऑलमोस्ट 9 ओवर्स टू स्पेयर हम वो मैच जीते। तो बहुत एम्फेटिक विन है, बहुत
परिपक्वता दिखा रही है, चाहे पूजा वस्त्रकार का अगर हो, मतलब
स्पेल देखिए,
हर मतलब एक तरह से मैन ऑफ द मैच,
कहां कह रहे थे कि उनकी इंजरी है, उनका फिटनेस इश्यूज है, और जब ऐसे मैचेस आते हैं तो वो हमेशा डिलीवर नहीं करती हैं।
4 विकेट लिए कल भी, और उससे पहले भी 2-2 विकेट लिए थे उन्होंने।
तो विमेन्स क्रिकेट में जो है हमारा, जो जब से विमेन्स क्रिकेट बीसीसीआई के अंडर आया है, पहले विमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर होता था, जो अनुराधा दत्त और वो सारी लेडीज थी जो रन करती थी, अब जो आया बहुत फर्क पड़ा है। देखिए लड़कियों में भी जो कॉन्फिडेंस आया है, बिकॉज दे आर लुक्ड आफ्टर वेरी वेल, उनके 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 जो जब वो ग्राउंड पे उतरती हैं तभी आपको लगता है कि बड़ी कॉन्फिडेंट टीम है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
और आगे बढ़ते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कल पूर्व बल्लेबाज और विश्व कप विजेता गौतम गंभीर को पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया। श्री गंभीर ने मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ की जगह ली है। गौतम गंभीर की क्रिकेट के सफर पर एक नजर।
भारतीय क्रिकेट टीम को T20 का खिताब जिताने वाले मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की विरासत अब गौतम के गंभीर हाथों में सौंपी गई है। वर्ष 2003 में उन्होंने भारतीय टीम के लिए अपना पहला एक दिवसीय मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला। अगले ही वर्ष ऑस्ट्रेलिया के सामने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर की शुरुआत भी की। 2007 में T20 विश्व कप के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे गंभीर ने 2011 एक दिवसीय विश्व कप में भी 97 रन की निर्णायक पारी खेलकर टीम को खिताब जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इस साल IPL में मेंटर के रूप में तथा इससे पहले 2012 और 2014 में कप्तान के रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने वाले गौतम गंभीर अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। 2008 में गंभीर को दूसरे सबसे बड़े खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से और 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये देखना दिलचस्प होगा कि कभी न हार मानने के जज्बे के कारण अलग पहचान बनाने वाले गौतम गंभीर मुख्य कोच की भूमिका में कैसे आगे बढ़ते हैं। सकलैन अख्तर, स्पोर्ट्स कैन।
राकेश जी, गंभीर ने मुख्य कोच की भूमिका में अब आ गए हैं, तो उनके सामने चैलेंजेस भी बहुत है। एक तो पहले श्रीलंका का दौरा 27 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसके अलावा सीनियर प्लेयर्स के साथ एक केमिस्ट्री बनानी, एक वो भी बड़ा मुद्दा रहा है।
देखिए दो चीजें हैं, राहुल की जो कोचिंग स्टिंट अगर आप देखें तो अंडर 19 की टीम के साथ रहे, काफी टाइम रहे, एनसीए में रहे, उसके बाद इंडिया ए टीम को देखा उन्होंने और फिर यू नो नेशनल टीम में आए। और बहुत अचरज की बात है कि गौतम गंभीर ने कभी कोई टीम कोच नहीं की है, सिर्फ केकेआर के मेंटोर बन के आए थे, चंद्रकांत पंडित कोच थे, चीफ कोच। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई टीम को कोच नहीं किया और सिर्फ एक T20 के फ्रेंचाइजी, एक फ्रेंचाइजी को आपने मेंटरिंग की है आपने एक सीजन, उनको आपने इंडिया का सारे फॉर्मेट्स का चीफ कोच डिक्लेयर कर दिया। सरप्राइजिंग है मेरे लिए। और उनके ये जो कोचिंग स्किल्स हैं, लाइक मैन मैनेजमेंट है, वो क्या है अभी तक मुझे मालूम नहीं है। और जैसा उनका टेम्परामेंट है, राहुल द्रविड़ से बहुत हटके हैं और उनका पर्सनल इक्वेशन विराट कोहली से कैसा है वो सबको पता है, सीनियर प्लेयर्स को वो कैसे डील करते हैं ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो बेबाक जो है बातें करते हैं, बिल्कुल वो अपनी बात रोकेंगे नहीं, अपने तक रखेंगे नहीं, जो उनको लगेगा ठीक, चाहे तो सुनने वाले को अच्छा ना लगे। तो टीम मीटिंग्स मेरे ख्याल से जो है वहां पे बिल्कुल मतलब थोड़ी सच्चाई के साथ थोड़ी डिप्लोमेसी कम होगी और शायद हमको कुछ बड़े ही यू नो टफ चीजें सुनने को और लिखने वालों को लिखने को मिलेगी।
ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा।
जी।
बात विंबलडन की, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा का सामना कजाखिस्तान की एलिना रायबाकीना से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में क्रोएशिया की डोडो वेकिक और इटली की जैस्मिन पाओलिनी आमने सामने होंगी। बड़े उलटफेर इस बार देखनी है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा महिला सिंगल्स में कि जैसा देखा जाए जो टॉप सीडेड थी मतलब उसमें मैक्सिमम बाहर हो गए।
देखिए टॉप तीन सीड्स तो बचे ही नहीं, फोर्थ सीड जो है किरण शेजदवन जो कि अभी हाईएस्ट सीड है, अगर सीडिंग के हिसाब से देखें तो टाइटल जीतने की सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई है तो वो है। और उसके अलावा जो नीचे वाला हाफ है उसमें तो यू नो लाइक वेकिक जो है वो तो जीती नहीं, मतलब वो तो यू नो अनसीडेड है और उनका मैच है पाओलिनी से, इटालियन गर्ल सेवेंथ सीड जो बहुत इम्प्रेसिव लग रही है मुझे। तो मैं देख रहा हूं कि वो फाइनल में पहुंचने के उनके चांसेस जो है मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ब्राइट लग रहे हैं। और
मगर पुरुष सिंगल्स में बैठे तो क्योंकि पाओलिनी का भी पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश है। पुरुष सिंगल्स में शुक्रवार को पहले सेमीफाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव का मुकाबला स्पेन के कार्लोस अल्क्राज से होगा। दूसरा सेमीफाइनल नोवाक जोकोविच और आज क्वार्टर फाइनल मैच होने वाला है लोरेंजो मुसेती और अमरीका के टेलर फ्रिस्क के बीच, उसके विजेता से होगा। मतलब डेनियल मेदवेदेव विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर को हराकर पहुंचे हैं।
और सिनर का देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद नंबर वन वर्ल्ड के हुए, फ्रेंच ओपन में हालांकि उतना अच्छा ना खेल पाए, यहां पे बहुत अच्छा खेल रहे थे। अगर आप कल का मैच भी देखें, पांच सेट तक चला और मेडवेडेव मेरे ख्याल से हर चीज में अगर आप देखें, फर्स्ट सर्व के परसेंटेज देख लीजिए, विनर्स देख लीजिए, डबल फॉल्ट्स देख लीजिए, पूरा अगर आप स्टैट्स देखें सिवाय एक के हर काउंट में मेडवेडेव बेटर थे। तो फर्क यह है कि सिनर जो हम कहते हैं खेल में कि बड़े पॉइंट्स आपको जीतने हैं, बड़े मोमेंट्स आपको जीतने हैं, वो नहीं जीत पाया। मेडवेडेव को जो रिवॉर्ड मिला है, ये जो सेमीफाइनल स्पॉट जो मिला है, वो सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने अपना जो अपनी जो एकाग्रता है वो बड़े पॉइंट्स पर उन्होंने बना के रखी और बेहद मतलब बेहतरीन जो उनका जो गेम था वो हमको देखने को मिला। और ऑफकोर्स ये भी था कि गेम के मैच मतलब उस मैच के दौरान सिनर को थोड़ी इंजरी इश्यूज भी हो गई थी, मेडिकल ब्रेक लिया था उन्होंने, लेकिन हाँ लेकिन उसके बावजूद भी वो खेल तो अच्छे ही रहे थे। लेकिन या ओवरऑल तो एक ये मैच बहुत अच्छा होगा सिनर मेडवेडेव और अल्कराज का, अल्कराज डिफेंडिंग चैंपियन है
जी।
और वो मैच अच्छा होगा और उनका इंतजार मोस्ट प्रोबेबली जोकोविच करेंगे क्योंकि वो भी सेमीफाइनल में आ गए बिना खेले क्योंकि उनके ओपोनेंट ने उनको वॉकओवर दे दिया।
और स्पेन यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। देर रात पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से पराजित किया। दूसरा सेमीफाइनल मैच देर रात नीदरलैंड्स और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला सोमवार को होगा। और जाते जाते अच्छी खबर कि भारतीय पैरा निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस और स्वरूप उनहालकर ने आज वाइल्ड कार्ड बाइट्राइट नियम के अंतर्गत पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए, प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। राकेश राव जी आप स्टूडियो में आए, चर्चा की हमारे साथ, इसके लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया।